నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్ట ప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః గోవిందాయ నమో నమః గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 6 అధ్యాయ 15 ఔర్ శ్లోక్ నంబర్ 24 प्रसंग बहुत ही सुंदर चल रहा है। गृहस्थ जीवों की उद्धार हेतु, शिक्षा हेतु और शिक्षा के साथ साथ इन श्लोकों के अंदर सिद्धांत भी दिया गया। गृहस्थ को कहां अपने को टिकाना चाहिए इन श्लोकों के अंदर बताया गया। बहुत ही सुंदर कथा अभी चल रही है जिससे हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ग्रहणीय विषय और त्याजनीय विषय, इसमें दोनों सिद्धांत उल्लेख होते जा रहा है। अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे इन श्लोकों को तो पता चलता है कि गृहस्थ कहां कहां फंसे हुए हैं और उनको क्या क्या चीज छोड़नी चाहिए। और एक तरफ अगर हम लोग छोड़ते हैं तो दूसरे तरफ कुछ मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि हम दोनों जगत का आनंद लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। भागवत के 10 स्कंद में बताया गया है या हमारे आचार्यों ने भी लिखा है कि अगर हम ग्रहणीय विषय जो भक्ति लेवल की चीज हैं, जो भक्ति के अनुकूल हैं, उनको अगर ग्रहण करते हैं तो त्याजनीय विषय अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन हम ठीक से उसको ग्रहण नहीं करते। वास्तव में हृदय में खुशी की ठिकाना नहीं है। प्रभुपाद जी के एक आज नए सेंटर के शुरुआत होने जा रही है रोहिणी टेम्पल का। प्रभुपाद की जितनी इच्छाएं थीं, जितना उन्होंने भविष्यवाणी किया था, सब के सब पूर्ति होते जा रहे हैं। और गृहस्थों के लिए तो बहुत अनुकूल समय है कि अपने अधिक से अधिक कमाई का हिस्सा उस मंदिर के नींव में डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कार्य में अपने कमाई को डालने का प्रयास करें जो जन्म जन्मांतर ही नहीं, युगो युगांतर तक हमें लाभ प्रदान करेगा। बताया गया है अन्य पुराणों के अंदर कि अगर मंदिर निर्माण में कोई अगर एक ईंट भी अपने शुद्ध कमाई के हिसाब से अगर प्रदान करता है तो करोड़ों पीढ़ियों की उधार होती है। एक पीढ़ी की तो बात छोड़िए, करोड़ों पीढ़ियों की उधार होती है और इसे भगवान की कृपा मिलती है, भगवान का धाम मिलता है। ये सब विषय वास्तव में ग्रहणीय विषय है कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। हम लोग ऐसे एक आदर्श गृहस्थ का चरित्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रतिदिन कि जिनके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों करोड़ों रानियां थी, फिर भी उनको जब कटु विषय का अनुभव हुआ तो अपना उद्गार इस अध्याय के अंदर दिए हैं। चित्रकेतु महाराज करीब करीब इस अध्याय के अंदर 7 श्लोक बोले और उन 7 श्लोक के अंदर भक्त और भगवान की बड़ाई और अपनी ग्लानि महसूस की है कि मैं कहां फंसा था। लेकिन कितना भी कोई गृहमेधी हो, कितना भी फंसा हुआ संसारिक जीव हो, अगर अच्छे साधु की संगति में पड़ जाता है तो उसका जीवन आसान हो जाता है इस संसार को छोड़ने। लेकिन दुख की बात यह भी है इस कलयुग के अंदर कि वैसा साधु ढूंढे कहां। लेकिन ऐसी बात नहीं है, साधु हैं नहीं, हम तथाकथित साधुओं के संगति में पड़ जाते हैं जिससे हमारा जीवन बिगड़ जाता है। तो हम लोग प्रयास करें। अभी जो श्लोक चल रहा है ये अंगिरा मुनि की उद्गार है चित्रकेतु के प्रति कि गृहस्थ मान लिया है कि हम किसी के अधीन हैं, लेकिन अधीनस्थता को किस तरह त्यागा जाए उससे बिंदु पर विचार नहीं कर पाता, उसका दिमाग वहां तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए हम लोगों का दिमाग कहां कहां टिका हुआ है इसको अगर इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता अपने आप चलेगा, हृदय के अंदर ये भाव उठेगा कि कितनी तुच्छ बंधनों से हम लोग बंधे हुए। और आज के श्लोक में भी यही आएगा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पहले ही लिखा है और अनुवाद के अंदर भी पहले ही उन्होंने लिख दिया है कि हम लोग कहां कहां बंधे हुए हैं। तो कृपया करके इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद तथा कथित इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करने का मतलब यह है कि केवल सुन करके और यही नहीं छोड़ना, अच्छे श्रोता उसको कहते हैं जिस विषय को ग्रहण करके अपने जीवन पर लागू करें। लेकिन हम लोग उपदेशक तो बन जाते हैं, उपदेशकर्ता बनते हैं, लेकिन उस विषय को अपने जीवन में लागू करने वाला नहीं बनते, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग रोज टीवी पर देखते होंगे या सुनते होंगे, बड़े बड़े फंक्शन दिल्ली में कई जगह चलते रहते हैं, कितनी कथाएं जल्दी रहती हैं, लेकिन कितने लोग सुधरे। देखने के बाद, सुनने के बाद भी हम वही के वही हैं। अच्छे श्रोता उनको शास्त्रों के अंदर बताया गया है जिस विषय को सुन करके वो अपने ऊपर लागू करके ग्लानि की महसूसी करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे कृष्ण मुझे इस बिंदु से, इस जो गोलाकार जो घेरा है इससे पार कीजिए। छठे स्कंद पंद्रहवां अध्याय श्लोक नंबर 24। कृपा करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। दृश्यमाना विना अर्थेना न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभि ध्यायतः नाना कर्माणि मनसः अभवं। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभि ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो अभवन्। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभि ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभि ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दृश्यमाना देखे जाकर बिना रहित बिना अर्थेना वस्तु या सच्चाई न नहीं दृश्यन्ते देखे जाते हैं मनोभवा मनोरथ कर्म भी सकाम कर्म के द्वारा ध्यायतः चिंतन करते हुए नाना विविध अनेक कर्माणि सकाम कर्म मनसः मन से अभवन प्रकट होते हैं। अनुवाद में एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। स्त्री संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका अस्थाई अस्तित्व नहीं है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। कृपा करके मेरे पीछे बोलिए। स्त्री संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका अस्थाई अस्तित्व नहीं है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। इस अंगिरा मुनि के उपदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले इस श्लोक के अंदर है पहला शब्द श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। पहला शब्द है दृश्यमाना। जो हम लोग देख सकते हैं या जिस चीज को देख रहे हैं बिना अर्थ है ना, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं बिना अर्थेन का मतलब है कि इसकी वास्तविक सत्तित्व नहीं है। देख रहे हैं लेकिन बिना अर्थ है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। पिछले वाले श्लोक में भी उदाहरण दिया गया है कि स्वप्न हम लोग देखते हैं लेकिन स्वप्न देखने के स्थिति है कि जब तक हम सोए हैं तो दिख रहे हैं, और जगते ही वो स्वप्न कहाँ चले गए और वस्तु जो सपने में मिली थी कहाँ गई पता नहीं। वैसे ही इस दृश्यमान जगत में जो कुछ वस्तु दिख रही है उसकी वास्तविकता नहीं है। सिद्धांतता दृश्यन्ते मनोभावा, इसकी वास्तविकता नहीं है, इसलिए जो हम लोग मनोभावा के अंदर, अच्छा मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है और उसी चीज को बार बार देखने का प्रयास करते हैं, वही हमारे बंधन का कारण बनता है। क्योंकि हम लोग इस हाथ से जिस वस्तु को नहीं पकड़ सकते हैं उस वस्तु को हम मन से पकड़ लेते हैं, मन की इतनी मजबूत पकड़ होती है कि अगर किसी भी चीज को मन अगर एक बार पकड़ लिया तो उसको भुलवाने का प्रयास करते हैं कि भूल जाए, लेकिन नहीं। अमृत बिंदु एक ग्रंथ है, अमृत बिंदु, उसके अंदर एक श्लोक आया है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षये बंधाय विषया संगै मुक्ताय निर्विषयः मनः। कि केवल मनोभावा शब्द इसके अंदर आया है कि मनोभावना के कारण ही हम अपने को बांध लेते हैं। गीता के पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर यह बात भगवान ने कहा है कि मन किसी वस्तु को पकड़ लेता है तो पकड़ने के कारण ही दुख योनि एवते, मन ने जिस चीज को पकड़ लिया और उस चीज को भोगने के प्रयत्न में लगा तो उसका परिणाम निकला कि दुख योनि एवते, दुख की योनि की पैदाइश हो गई। सारे जीव योनि से पैदा होते हैं, वैसे ही अगर मन से हम किसी वस्तु को पकड़ लिए और मन हमारा छोड़ नहीं रहा है तो उस मनोभाव के कारण हम उसी भावना में फंस करके अपनी पुनरावृत्ति अर्थात पुनः जन्म का मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए इस श्लोक के पहले लाइन में सिद्धांत यह है कि इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उसका कोई वास्तविकता नहीं है, और इन चीजों को अगर हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, इनको अपने जीवन में प्रयोग करके इसका उत्पादक करता अपने को मानते हैं और इस प्रकार की भाव है तो यही भावना हमको इस संसार में बांध कर रखेगी। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है स्वप्नवत है, सपने की तरह। कर्म भी ध्यायतो नाना, नाना प्रकार के कर्म हैं जिनका हम ध्यान करते हैं और उसी की पूर्ति में अपने कई जन्म हमने गंवाया, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी उसी कर्मों की पूर्ति में लगे हुए हैं जो सपने हैं। इसलिए कर्म गीता के अंदर भी कर्म की संस्तुति की गई है, भागवत में भी कर्म बताया गया है कि कर्म वह चीज है, कर्म उसे कहते हैं जिससे कृष्ण की प्रसन्नता होती है। जिस कर्म को करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी विकर्म है। विपरीत अर्थ ददाति इति विकर्म, जो इस कर्म को करने से हमें संसार में बंधना पड़ता है वह है विकर्म, और हम लोग उसी की पूर्ति हेतु जीवन भर प्रयास करते हैं। बिना अर्थे न कुछ मिलने वाला नहीं है। भागवत में कई उदाहरण दिए गए हैं कि अगर चावल के भूसी को अगर कोई कूटे, उसको फिर से उस भूसे के अंदर से चावल निकालना चाहे तो नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार इस संसार में जिस वस्तु की प्राप्ति हेतु हम इतने कठिन परिश्रम करते हैं उससे कुछ मिलता नहीं। श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम हाथ लगता है। और प्लस पॉइंट यह है कि उससे और बंधन उत्पन्न होता है। अब यहां यह उद्गार दे रहे हैं अंगिरा जी, देखिए ऐसे जीव की उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं अंगिरा मुनि कि जिनके एक नहीं दो नहीं करोड़ों रानियां थी, गृहस्थ अपने हृदय पर हाथ रख करके सोच सकता है इस विषय को कि एक स्त्री धारण करने के बाद, एक पुत्र पैदा होने के बाद, एक परिवार को अपना मानने के बाद कितनी फसावट। जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि कारज हानि होत नहीं किए साधु की संग, यहां यह प्रत्यक्ष विषय दिख रहा है कि थोड़ी सी संगति इस भौतिक आसक्ति में पड़े हुए जीव के लिए थोड़ी सी संगति की प्राप्ति हुई है। पहले जन्म में हुई थी उसके प्रभाव से समझिए, चाहे साधुओं की कृपा अनायास भी कभी कभी मिलती है, अनायास भी कृपा करते हैं साधु लोग, थोड़ी सी संगति मिली है अंगिरा जी की। और वैसे जीव को उपदेश दे रहे हैं जिनके पास सारे सुख सुविधा हैं। हम लोग तो 12 घंटे 18 घंटे काम करके परिवार मेंटेन करने में दम निकल रहा है लोगों की, लेकिन उस चक्रवर्ती सम्राट को, सूरसेन देश का राजा था चित्रकेतु महाराज, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन पुत्र विमोहे न, पुत्र की इच्छा के विमोह में फंसे हुए थे। साधुओं की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई और पहले ही संकेत कर दिया गया कि हे राजा सावधान, यह पुत्र तो प्राप्त करोगे हमारे आशीर्वाद से, लेकिन इसका नाम ही है हर्ष और शोक। देखा जाता है इस संसार में कि पुत्र पैदा होता है तो कितनी खुशियाली होती है, कितनी खुशियां मनाई जाती है, लेकिन आगे का क्या परिणाम है इस पर भी विचार करना चाहिए। पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी गृहस्थ यह समझ करके पुत्र पैदा करता है या परिवार को अपना मानता है कि हमें इन लोगों से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन मिलता है बदले में दुख। और यह घर घर की और व्यक्ति व्यक्ति की यह कथा है, आत्मकथा, अपनी कथा है कि इसका अनुभव कर सकता है, प्रतिदिन इसका अनुभव होता है। और इस प्रकार की अनुभव होने के बाद भी, दुख की अनुभूति होने के बाद भी, सुखम मन्यति इति, केवल सुख मान लिया है कि नहीं चलो, अगर कितना भी दुख तकलीफ दे रहा है तो अपना ही है ना। मेरे गुरु महाराज तो कहा करते हैं कि गृहस्थ को जब पत्नी डांटती है, जब उसके बच्चे उसको लताड़ते हैं, गाली देते हैं, तो इस बात को इस तरह से वह स्वीकार करके और उस घर को धाम मान करके रह जाता है कि चलो मारा तो अपनों ने ही मारा। पुत्र के मार को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि किसी ने लाल जूता से मारा। अरे मार तो मार होती है, लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए गृहस्थों के उद्गार भागवत के अंदर है। अब आगे देखेंगे इसी चित्रकेतु महाराज को, इतनी विरक्ति होगी गृहस्थी जीवन के तरफ वो फिर मोड़ करके नहीं देखेंगे। उस भरत महाराज का चरित्र हम लोग भागवत में पढ़ चुके हैं और दी हुई है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन उन्होंने भी त्याग, ऐसा त्याग किया, उस त्याग को मलवत त्याग कहा गया। जिस प्रकार ऐसे वो इस संसार को छोड़े कि फिर दोबारा मुड़ करके, जैसे कोई शौच करने के बाद जो दोबारा मुड़ करके नहीं देखता, वैसे उन्होंने इस संसार को छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि पूरा गृहस्थी जीवन केवल दुखमय नहीं है, इस बात पर भी मत जाइए। इसके अंदर गृहस्थ शब्द के अंदर बहुत अर्थ छिपे हुए हैं। गृहस्थ, गृह में स्थित रहकर के भी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यथावत गृहस्थ बनेंगे तब उसकी योग्यता को प्राप्त करने के लिए भागवत के जो गृहस्थों के जीवन चरित्र हैं उनको अपने जीवन में पढ़ करके उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो भागवत के सातवें स्कंद के अंदर छठे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में बताते हैं कि कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्य रुचिरांस्त मंत्रान सुहृत सु असनेह सीताम शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चीत। गृहस्थ के पहले फसावट की बात बता रहे हैं। हरे कृष्ण, पहला संकेत दिया गया प्रहलाद महाराज के द्वारा कि गृहस्थ पहली बार में कहां बनता है। कथम प्रियायाम, प्रिया के साथ कथा करने में, बातचीत करने में। भागवत के दसवें स्कंद के 80 अध्याय के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से एक श्लोक कहते हैं कि अयम ही परमो लाभ हो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्मैर नियते याम प्रियया भीरु भामिनी। हे प्रिय, रुक्मिणी जी को संबोधन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, ध्यान से सुनो कि गृहस्थ जीवन का सुख क्या है। अयम ही परमो लाभ हो, गृहस्थ जीवन का यह परम लाभ इतना ही है कि प्रियया भीरु भामिनी, प्रिया के साथ, पत्नी के साथ कुछ हास परिहास कर लिया जाए। कुछ वार्तालाप कर लिया जाए। श्लोक के टीका के अंदर आचार्यों ने लिखा है कि कथा अनुकथा का अर्थ यह है, वार्तालाप करने का अर्थ यह है कि उसके साथ मजाक किया जाए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिना यन्मय नियते यामो। रात्रि और दिन कैसे बीत जाते हैं तो केवल कथन और उपकथन करने में, बात करने में, गृहस्थ जीवन को मेंटेन करने में। और एक आचार्य ने तो लिखा है इस श्लोक के टीका में कि दिन भर का थका हुआ गृहस्थ जब 18 घंटे या 12 घंटे कार्य करके आता है तो केवल हंस करके अपने पत्नी के साथ केवल बात कर लेता है तो उससे दिन भर की उसकी थकावट दूर हो जाती है। ये भाव लिखता है और उसी भाव को लेकर गृहस्थ जीवन भर बेचारा कितना कठिन परिश्रम करता है, ये सबके जीवन की एक कहानी। गृहस्थों की स्थिति ऐसी है, भागवत के अंदर ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि आदमी डुबकी लगाए तो वहीं का वहीं रह जाए। भागवत के सातवें स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर 40 श्लोक है, जिसके अंदर 40 नंबर श्लोक के अंदर प्रहलाद महाराज बताते हैं जिह्वय कतोचित विकर्षित भावि तृप्ता शिष्णो न्यस्तो गुदरम श्रवणम कुतश्च घ्राणो पतंस कल क्वच कर्म दिक् शक्ति बहिर्वय सपत्न्य गेह पति लुलन्ति। गेह सपत्न्य लुलन्ति, कहां कहां फसावट है। गेह मतलब घर और घर में रहने वाले संबंधी, देहज मतलब इस देह से पैदा हुए पुत्र या पुत्री, लुनंती मतलब जो भी गृहस्थी के कार्य हैं इन्हीं को मेंटेन करने में वो बेचारा परेशान रहता है। और उसकी स्थिति ऐसी है, उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे प्रहलाद महाराज देखिए बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो इस विषय को वर्णन करते हैं कि उस गृहस्थ की स्थिति वैसी है जैसे एक गृहस्थ को बहुत सी पत्नियां हों और अपने अपने शयन कक्ष में ले जाने के लिए उसको सारी स्त्रियां पकड़ करके खींच रही है, हमारे पास चलो हमारे पास चलो। वही स्थिति इन जीवात्माओं की, इन जीवों की है जिसने देह मान लिया है। इस देह के ऐसे ज्ञानेन्द्रिय हैं, कर्मेन्द्रियां हैं, जिनको हर विषय आंख अपने विषय को पकड़ करके खींचती है, जो आंखें हैं वो अपने, कान है अपने विषय को पकड़ करके खींचती है, और जिह्वा अपने विषय को पकड़ करके खींचती है। उसकी वैसी स्थिति है कि हर विषय उसको पकड़ करके गिराने के चक्कर में पड़े, अब वो कहां उठ पाए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी बताते हैं भागवत के अंदर कि अगर कदाचित नारद जैसे अगर शुद्ध साधु की संगति मिल गई तो कितनी भी ये फंसावटें हैं सब पीछे पीछे दौड़ती रह जाएंगी पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब हम लोगों को क्या चाहिए? सारी सुख सुविधा प्रभुपाद ने दिया, मंदिर दिया, राधिका रमण जी को दिया, भागवत दिया, अपने शिष्यों को दिया, लेकिन अब फिर भी हम इनका संगति नहीं करना चाहें तो फंसे गए। प्रयास करें छूटने का। भागवत कहती है कि अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मैं असमर्थ हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह शक्ति आप प्रदान कीजिए कि हम आपका नित्य स्मरण कर सकें। अगर आप इस प्रकार की कृपा कर दोगे तो हम आपका स्मरण कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ के पास इतना भी तो समय निकाले कहने के लिए तो, लेकिन आज के गृहस्थों के पास टाइम नहीं है। उठते ही न्यूज़पेपर भागवत बन जाता है, भागवत का श्लोक 24 घंटे के अंदर कभी नहीं खोलते होंगे, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त है भगवान के विषय में सुनने और समझने के लिए जिस समय निर्मल बुद्धि है उसी समय कचड़े को मन के अंदर डाल लेते हैं। जबकि सुबह का समय केवल भगवान ने अपनी भक्ति करने के लिए, अपना स्मरण करने के लिए बनाया, लेकिन गृहस्थ उस समय का दुरुपयोग करता है, जिससे वह वहीं का वहीं है। आज तक कितने सालों से माला पकड़े हुए हैं, गुरु स्वीकार किए हुए हैं, लेकिन वहीं के वहीं। निकलो, जब तक स्टिक नहीं होंगे हम लोग अपने साधना में, भागवत को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और ठीक से भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम वहीं रहेंगे। बहुत लोग आते हैं दर्शन करने, लेकिन पूछने के बाद पता नहीं चलता कि भगवान किस प्रकार का ड्रेस पहने हैं, पुजारी ने इतना परिश्रम करके क्या श्रृंगार किया है, कुछ ध्यान नहीं। आए प्रणाम किए बस, अरे कुछ ले करके जाओ। ऐसे जगह आए हो यहां सब कुछ मिलता है। भागवत कहती है कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। अगर कोई भगवान को चाहता है, कोई निष्कामता को चाहता है, या कोई सर्व कामता को चाहता है, सर्व कामना चाहता है, तो यहां सब कुछ मिलते हैं। यहां ऐसा मार्केट है, ऐसा दुकान है, सब कुछ मिलता है। अब लेने वाले के ऊपर है क्या चाहिए उसको। भगवान अपने भक्तों को भी विषय प्रदान देते हैं, लेकिन ऐसा अनुकूल समय बना करके देते हैं, उनको यह ध्यान रहता है कि यह हमारा भक्त है, फंसने न पाए। अगर हृदय से हम निकलने का प्रयास करते हैं तो भगवान उस गृहस्थ को फंसने नहीं देते। भागवत का उदाहरण है कि जैसे कोई असमर्थ बच्चा होता है, अगर उठने का प्रयास करता है तो मां अपनी उंगली पकड़ा देती है, सहारा दे देती है। वैसे ही श्रुति शास्त्र हम लोगों की मां है। कैसे हम लोग असमर्थ हैं, कैसे उठ सकते हैं, इसका रास्ता है दे सकते। प्रयास तो करें, हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो उठेंगे कहां से। अब क्या गुरु ने माला थमा दिया तो गुरु माला करेंगे अब के बदले? अभी दो चार दिन पहले की बात है, अक्रूर प्रभु जी क्लास दे रहे थे सुबह में, नहीं महाराज थे, तो महाराज ने पूछा कि कौन व्यक्ति एक घंटा प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ता है? बहुत कम हाथ उठाए। अगर अपने को इस माया जगत से हम लोग वास्तव में उबारना चाहते हैं तो प्रभुपाद की बुक्स को कम से कम, कम समय बताया गया है कि एक घंटा तो पढ़नी चाहिए। अगर बचाना है तो नहीं, तो अगर गिरे रहना है तो भागवत सेट अलमारी में पड़ा है लेकिन आज तक खुला नहीं। वही रहेगा। देखिए समय देख करके भगवान या भगवान के भक्त वर्षा करते हैं। यह उपदेश की वर्षा तब की जा रही है जब पूर्ण रूपेण चित्रकेतु महाराज शोकाकुल है, पुत्र विमोह में व्याकुल है। और हम लोग प्रतिदिन, ये तो पुत्र शोक में व्याकुल हैं, मरने के बाद व्याकुल हैं, लेकिन कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई घर के लिए व्याकुल है, हर व्यक्ति व्यग्रता स्थिति में है, व्यग्र है। इस पागलपन को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अब चित्रकेतु का वही उद्गार अगर आप लोग पीछे वाले श्लोक में पढ़ेंगे तो कितना अपने को ग्लानि महसूस करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आज समझा कि साधु क्यों फक्कड़ की तरह घूमते हैं। घूमने का, साधु के घूमने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ हमें कोई दे दे। वो जो वस्तु देते हैं वो कोई नहीं दे सकता, भगवान के बाद कोई नहीं दे सकता। जिस वस्तु को साधु दे सकते हैं उस वस्तु को केवल देने में भगवान समर्थ है, नहीं तो और कोई नहीं दे सकता। इस बात का महसूस कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज कि आज मुझे पता चला कि आप पहले ही जानते थे, लेकिन मैं इतना पुत्र की इच्छा से उत्क्रोध किया था अपने हृदय को कि मैं समझ नहीं पाया। और वास्तव में साधु की भाषा समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। एक आचार्य ने लिखा है कि 100 वर्ष साधु के साथ रहना, 100 वर्ष उसके साथ घूमना और 100 वर्ष उसके कार्य को ध्यान से देखना, तब शायद वो समझे और पूरा पूरा वो समझ भी नहीं पाएगा। इसी आधार पर तो चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत के अंदर कहते हैं कि भक्तेरे क्रिया मुद्रा विज्ञे न विज्ञा। भक्त क्या करना चाहता है कभी कभी ठीक ठीक मुझे भी ज्ञात नहीं होता ये क्या करना चाहता है, जबकि भगवान सर्वज्ञ है। इसलिए अपनी फसावट तब छूटेगा। भागवत के अंदर बताया गया है, ऋषभ देव ने उपदेश दिया है अपने पुत्रों को, जितने भागवत के अंदर कथाएं हैं वो केवल कथा नहीं है, कथा में गहरी सिद्धांत है। कथा ही नहीं है, केवल सिद्धांत है। और कहीं पर भी भागवत के अंदर नहीं कहा गया है, फंसने का विषय कहीं नहीं बताया गया, केवल निकालने के लिए कि जीव कैसे इस संसार से निकल सकता है, कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है, कैसे भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है, ये सब बातें बताई गई। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में ही भागवत को ऐसा ग्रंथ बताया गया है कि इसके अंदर कोई कैतव धर्म नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। और हम लोग भी मिश्रित भक्ति करके कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते कि संसार का भी स्वाद ले लें और भगवान के भक्ति का आनंद ले लें तो नहीं मिल पाएगा, असंभव। एक तरफ छोड़ो दूसरे तरफ प्राप्त करो। लेकिन यह कहना आसान है, छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास यह है कि अगर भगवान से याचना करेंगे, मांगेंगे कि नहीं हमें इस बंधन से छुड़ाओ तो जरूर छुड़ाएंगे। नहीं, भगवान के सामने आकर के लिस्ट देते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, तो समझ लीजिए कि फंस रहे। भगवान के सामने राधिका रमण जी से यही प्रार्थना करना है कि भगवान मुझे इतना सद्बुद्धि दो कि आपका स्मरण कर सकें, आपका नाम ले सकें, आपका दर्शन कर सकें, और सबसे जरूरी है कि आपके भक्तों के संगति में रह सकें। भागवत कहता है दशम स्कंध, अगर गलत संगति में पड़ जाते हैं तो पता नहीं कितने जीवन बिगड़ जाते हैं। और अच्छे संगति में अगर हम पड़ जाते हैं तो कितने जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति कितनी जल्दी सुधरती है कि हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। उदाहरण दिया हुआ है भागवत के दशम स्कंध में गोपियों द्वारा कि अगर सांप किसी को काट लेता है तो एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन कुछ संगी व्यक्ति जो संसार में अनवरत लिप्त व्यक्ति है अगर उसकी संगति में पड़ जाते हैं तो हम कई जीवन गंवा बैठते हैं। इसलिए अपना उठने बैठने का स्थान सोच करके चूज करना, किसके साथ बैठना है, कैसे बैठना है, ध्यान देने की बात। प्रतिदिन साधु लोग कृपा की वर्षा करते हैं लेकिन लेने के लिए हमारा हृदय रूपी बर्तन खाली नहीं है। पहले से विषय के जो स्थिति है सारे ने उन बर्तन को फूल कर रखा है, पूरा पूरा भर रखा है। अब रखेंगे क्या? तुलसीदास जी कहते हैं रामायण के अंदर कि कर कमंडल कर गए, अगर हृदय रूपी बर्तन अगर हम खाली करके अगर भगवत कृपा राम जी की कृपा भरने का प्रयास करते हैं तब तो बर्तन ठीक है, नहीं तो वैसे बर्तन से कोई शुद्धता नहीं या रखने से कोई मतलब नहीं जिसके अंदर केवल गंदी चीज भरा। हृदय को बड़ा करो, शुद्ध रखो, खाली रखो भगवत कथा और भगवान नाम के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान के भक्तों की संगति के लिए। और केवल सिद्धांत और कथा के माध्यम से अंग्रया मुनि यही दे रहे हैं चित्रकेतु को कि हे राजा, दृश्यमान सपने की तरह तूने अपने पुत्र को देखा और देखा भी, खुशी भी मनाया और उसका रिजल्ट भी देख लिया। अब सावधान हो जा, बिना अर्थे न इस जगत में जो भी अर्थ को देने वाली वस्तुएं नहीं हैं उनकी संगति में मत पड़ना। नहीं तो अभी तो रो रहा था, ऐसे कितने जीवन तू रोएगा। इसलिए सावधान हो जा, अगर सावधान रहने के लिए ही इस श्लोक के अंदर सिद्धांत कहा जा रहा है कि मनोभाव जो है अपने मना की जो भाव है उसको ठीक रखो, मन में एक कामना जरूर रखो, राधिका रमण जी का दर्शन करना है, भागवत पढ़ना है, साधुओं की संगति में रहना है और भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाना है कि भगवान, जन्म जन्म का ये बिगड़ा हुआ जीव आपके शरण में आया है, आपके शरण में आया है, इसको आप कृपा करेंगे तो जरूर सुधरेगा। लेकिन केवल जिह्वा से कहना ही नहीं, प्रयास भी करना। अब इस श्लोक में पहले लाइन में ही तीन चीज बता रहे हैं कि कहां कहां गृहस्थ फंसता है, स्त्री, संतान और संपत्ति। प्रभुपाद जी ने कई जगह श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि गृहस्थ दो जगह फंसा हुआ है ज्यादा, कंचन और कामिनी। कंचन का अर्थ है धन, सोना, संपत्ति, जितने भी संसार की भोग वस्तु है। कामने का अर्थ है स्त्री। लेकिन स्त्री से भी हम लोग देखे हैं कहीं कहीं कितने भक्तों को वैराग मिली है, भक्ति की सीख मिली है। संत रामचरितमानस के लेखनकर्ता श्री तुलसीदास जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, कितना बड़ा त्याग हुआ केवल कटु वचन के कारण। लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, कहां तू इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे दौड़ रहा है, धिक्कार है धिक्कार है ऐसे प्रेम को। कितनी अच्छी बात है कि अगर एक शब्द अगर हम लोग मान जाए और अपने हृदय में रख लें तो अपना मुख हम भगवान की तरफ कर सकते। लेकिन शिक्षा तो ले, हर जगह उस शिक्षा को लेकर के विचार तो करें। और यह भी अर्थ नहीं है कि इससे केवल फंसता भी है, स्त्री छुड़ा भी सकती है, संतान छुड़ा भी सकता है और संपत्ति भगवान को भी दे सकता है। अगर हमारे पास धन है, भगवान का मंदिर निर्माण करने में हम सहयोग दिए तो हमको बचा लेगा। अगर पिता भक्त नहीं है, पुत्र भक्त बन गया तो उस पिता को बचा लेगा। अगर पति भक्त नहीं है, स्त्री भक्त है तो अपने प्रयास से उसको प्रसाद खिला करके उसका उद्धार कर सकते हैं। अब यह नहीं कि बस केवल कुठार चलाते रहो, केवल स्त्रियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, गृहस्थों के ऊपर। सिद्धांत को समझो, भावार्थ क्या है, गुह्य रहस्य क्या है। इन तीन चीजों को भगवत सेवा में लगा करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं, स्त्री को, संतान को, संपत्ति को। अगर इनकी सेवार्थ भगवान के लिए अगर हम इच्छा रखते हैं कि ये हमारे पास जो है भगवान की सेवा में लगे तो हम इससे छूट जाए। अब इस श्लोक के संबंध में प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य लिखते हैं, कितनी गहराई में हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं या समझ पाते हैं, ध्यान से सुने प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की कि प्रत्येक वस्तु मानसिक कल्पना मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है कभी नहीं। देखिए एक श्लोक के गहराई में प्रभुपाद जी कितनी प्रवेश करते हैं। कि हे राजा तूने कामना किया था, जबरदस्ती अंगिरा और नारद से पुत्र मांगा था, अब तू परिणाम देखो। तूने मनोकामना किया था, मनोभाव रखा था, अब तेरी मनोकामना पूरी हुई है। वो तुम्हारा पुत्र, पहले तुम्हारा पुत्र नहीं था, अभी थोड़े देर के लिए दिखा और बाद में भी तुम्हारा नहीं रहा। भागवत के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनाने व तत्र का परिदेवना, कि जीव शुरू में भी दिखाई नहीं देता, मध्य में थोड़े समय के लिए व्यक्त होता है और फिर लास्ट में भी वो अव्यक्त ही रहता है। तो हम लास्ट वाला में भी दिखाई नहीं दिया, शुरू वाला में भी दिखाई नहीं दिया, तो बीच वाली स्थिति को देख करके हम क्यों फंसे? उसको भी मान ले कि नहीं, ये नहीं दिख रहा, ये अपना नहीं। लेकिन हम लोग उस चीज को लेते नहीं, दोनों किनारे को साइड में छोड़ देते हैं, बीच वाले को पकड़ लेते और इसीलिए फंसते हैं। क्योंकि यह पुत्र तुम्हारा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और नहीं रहेगा। कभी दिखता है, आज दिख गया कि तुम्हारा यह पुत्र है, तूने मान लिया है, इसलिए तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है। अगर तू नहीं मानता तो दुख नहीं होता। कश्यप जी भी अदिति को श्रीमद्भागवत के अंदर बताए हैं, कस के आदि पुत्रादि मोह वही कारणम, कौन किसका पति है, कौन किसका पति है, केवल मोह वही कारणम, हमने मान लिया है कि ये मेरा है और यही दुख है। गीता की शुरुआत भी तो इसी से हुई, अहम ममेति, मामका और पांडवा, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बता दिया और यही दो शब्द पूरे महाभारत करा दिया। अगर हम मामका छोड़ दें, अगर उस जगह पर भगवान को ला दें, तो हम इस जगत में छूटे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि नहीं रख पाते, उस स्थान को हम ग्रहण कर लेते हैं, माम मैं कर रहा हूं। रात्रि में स्वप्न में हमें बाघ तथा सर्प दिखते हैं, वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी हुई उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्नवत की भांति है, क्योंकि वास्तव में उसका अस्थायी अस्तित्व नहीं है। उसका उत्तर है कि दृश्यन्ते, जो देख रहे हैं यह स्वप्नवत है, इसका वास्तविक कोई अर्थ नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है, सुनिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के संदर्भ में क्या टीका लिखते हैं। बहुत बड़े आचार्य हुए भागवत के, सारे आचार्यों के टीका में इनकी टीका मुख्य मानी जाती है, क्योंकि ये श्लोक के बहुत गहराई में डूबते हैं। लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है कि अर्थे न व्याग्रह संप्रादिता दिनैव दृश्यमाना स्वप्नादि भंगे सती न दृश्यते। जब हम सोए हुए थे सपने में तो भयानक सपने देख रहे थे बाघ आदि का और उससे भयभीत हो रहे थे, लेकिन जैसे ही स्वप्नादि भंगे, जैसे ही हमारे सपने भंग हो गए, हम जग गए, तो सारी भय चली गई। केवल वो सपने के भंग थे, केवल सपने के वो कष्ट थे, भय थे। स्वप्नादि भंगे सती न दृश्यते, जब हम जग गए तो सत्य सपने में वो बाघ जो हम देख रहे थे वो सत्य प्रतीत नहीं हुआ, सामने नहीं है। तद एवं दाराथयो वास्तव वस्तु भूता स्वप्नादयो अवस्तु भूता सर्वे मनोभवा। जैसे इस जगत में हमने किसी को पत्नी बनाया, किसी को पुत्र बनाया, किसी को कुछ बनाया, लेकिन ये स्वप्नादयो थे। जैसे सपने में हम देख रहे थे बाघ को, वैसे ही ये भी अपने नहीं है, वास्तविक सपने नहीं है। भूता से सर्व मनोभवा, जीव का ये मनोभाव था, यह उसने कामना किया था और उस कामना को मनोवासना चंत्यात मनोभवा, और उस वस्तु को उसके मन ने पकड़ लिया कि यह मेरा है, और उसी मेरापन के कारण अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। रूपा जी लिखते हैं कि जैसे रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है, रूपा इस टीका का अनुवाद कर रहे हैं कि किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है तो उनका अस्तित्व नहीं दिखता। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपभोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेक वस्तुएं खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इस भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न रहता है। यही कारण है कि हमें नाना शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब कोई अगर आप लोगों से पूछे कि हम लोग इस संसार में क्यों बार बार जन्म लेते हैं, तो उत्तर यही दिया जा सकता है कि हमने मनोभावा, हमने एक कामना किया था, हमने ऐसी इच्छा रखी थी, जिस इच्छा के फसावट में हमें फिर इस जन्म में, इस जगत में फिर जन्म लेना पड़ा। इच्छाएं ही हमको इस जगत में बार बार लाती हैं। और श्री भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है, कर्मणा दैव नेत्रेण। इस प्रकार हम अधिकाधिक मनोरथ करते जाते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा का यही कारण है। हम क्यों आते हैं? तो विभिन्न प्रकार के मनोकामना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, वो इच्छा हमें बांध करके इस संसार में फिर बार बार ला देते हैं। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जेई प्रयास करता है, कभी कभी वैराग आता है, वो छूटना चाहता है, लेकिन आगे वो देखते 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 कभी जब पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास करता है तो आगे वाले वस्तु को छोड़ करके फिर पीछे वाली वस्तु को पकड़ लेता है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ये बच्चे कैसे जिएंगे, हमारी पत्नी कैसे रहेगी, ये हमारा संसार कैसे चलेगा। गृहस्थ कभी कभी प्रयास करता है, कथा सुनने के बाद उसके अंदर वैराग आता है, लेकिन फिर पीछे मुड़ते ही फंस जाता है। जेव जेव उरझत जाते तेव तेव फंसत जाए। वो प्रयास करता है कि हम छूट जाएं, छूट जाएं, छूट जाएं, लेकिन एक समस्या का सुलझाव करने के बाद दूसरी समस्या वो खुद ही उत्पन्न कर लेता है। इसलिए प्रयास हमें नित्य प्रतिदिन ये करना है, प्रार्थना करनी है भक्त और भगवान से, प्रभुपाद से, हे भगवान मेरा अधिकार मन, कहीं भी हमें इस संसार में बार बार जन्म जरूर देना, लेकिन ऐसे परिवार में ऐसे जगह देना जहां आपके भक्तों की संगति मिलती रहे। इसी चित्रकेतु महाराज पूर्व जन्म में क्या थे जो सुने हैं वो बताइए। पहले क्या थे? वृत्रासुर के बाद इन्होंने आया इस शरीर में, चित्रकेतु के शरीर में। उन्होंने स्तुति किया है वृत्रासुर महाराज ने, जबकि असुर योनि में थे, उन्होंने ऐसी प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे इस संसार में आने से घबराहट नहीं है, मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें इस संसार में बार बार आना पड़े, लेकिन हे प्रभु, मुझे ऐसे घर में जन्म देना जहां आपके भक्तों की संगति मिलती रहे। जन्म से नहीं घबराना है, भक्ति मांगने के लिए प्रार्थना करना है, और हम भक्ति मांगेंगे तो भगवान देंगे, जब सब कुछ दे रहे हैं तो भक्ति क्यों नहीं देंगे। प्रार्थना कीजिए और ध्यान से इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधिका रमन जी की। हरे कृष्ण।